ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने जमीन खरीदी बिक्री में गाइडलाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर भी रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन दर पर ही लेने का फैसला लिया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा बस्तर जिले के धुड़मारास गांव का चयन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए किया गया। प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों में अवैध धान की बिक्री रोकने के लिए लगाई गई बायोमेट्रिक मशीनें सीमावर्ती जिलों में एंट्री एग्जिट प्वाइंट पर स्थायी और अस्थायी नाके बनाए गए। और जगदलपुर में आयोजित अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में आज तमिलनाडु पुलिस ने छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ को हराया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने संपत्ति खरीदने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत दी है। सरकार ने जमीन खरीदी बिक्री में गाइडलाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर भी रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन दर पर ही लेने का फैसला लिया है। इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर ऋण मिल सकेगा। इस नियम में संशोधन के बाद संपत्ति खरीदने वाले अब सौदे की रकम गाइडलाइन दर से अधिक होने पर भी वास्तविक मूल्य को अंकित कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई रजिस्ट्री शुल्क नहीं देना होगा। इस नियम से आमजनों को न्यायिक प्रकरणों में भी संपत्ति का वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा। यदि कभी संपत्ति में कुछ धोखाधड़ी पाई गई तो व्यक्ति विक्रेता से वही मुआवजा पाने का हकदार होता है जो रजिस्ट्री पेपर में लिखा हुआ है। संपत्ति का सही मूल्य रजिस्ट्री में अंकित होने से प्रभावित व्यक्ति को उसका सही मुआवजा प्राप्त हो सकेगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा बस्तर जिले के धुड़मारास गांव का चयन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से 20 गांव का चयन किया गया है जिनमें धुड़मारास भी शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उस उपलब्धि के लिए पर्यटन विभाग की टीम के साथ ही बस्तर जिला प्रशासन और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धुड़मारास प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर की आदिवासी जीवन शैली, पारंपरिक व्यंजन, हरियाली और जैव विविधता से समृद्ध यह गांव पर्यटकों के लिए एक आकर्षक ही नहीं बल्कि रोमांचक स्थल भी है। गौरतलब है कि धुड़मारास और चित्रकूट गांव को इस वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला था। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कल सक्ती जिले में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ दिलाया जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के साथ ही जिला आयुष अधिकारी को नियमित रूप से जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को आयुष चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूक करने को कहा। वहीं शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। छत्तीसगढ़ में सभी धान खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है। राज्य के सीमावर्ती जिलों में एंट्री एग्जिट प्वाइंट पर स्थायी और अस्थायी नाके बनाए गए हैं जिससे बिचौलिए और कोचिए अपना धान सीमावर्ती राज्य से लाकर यहां न बेच सके। इसके अलावा कई नोडल और उड़नदस्ता टीम भी बनाई गई है जो लगातार सभी केंद्रों की निगरानी भी करेगी। खाद्य विभाग के सचिव अलभनगन पी ने प्रदेश के किसानों से इन बिचौलियों से बचकर रहने की अपील की है।
किसान भाइयों से राज्य शासन की ओर से यह अपील है कि किसान भाई जो कोचियों और बिचौलियों से बिल्कुल बच के रहें और राज्य शासन इस बात पे प्रतिबद्ध है कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक किसान के जो यहाँ पर पंजीकरण किया है उनके जो मेहनत का जो धान है उसको क्रय करने के लिए पूरा व्यवस्था की गई है। लेकिन इस बीच में ये पूरा व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए अगर कोई बिचौली कोई कोचिया कोशिश कर रहा है उनको बिल्कुल साथ ना दे, उनसे बच के रहे।
गौरतलब है कि 3100 रुपए में धान खरीदी होने की वजह से सीमावर्ती जिलों में पड़ोसी राज्यों से लाकर बिचौलिए प्रदेश में धान बेचने की कोशिश करते हैं। जगदलपुर में आयोजित की गई अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब तमिलनाडु पुलिस ने जीत लिया है। प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ और तमिलनाडु पुलिस के बीच खेला गया। इस मैच में तमिलनाडु पुलिस ने पेनाल्टी शूटआउट में छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ को 2-3 गोल से हराया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर स्थानीय विधायक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों पर आश्रितों की अधिकतम आय सीमा में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब शासकीय सेवकों के आश्रितों के लिए आय की अधिकतम सीमा 3,050 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7,750 रूपये प्रतिमाह कर दी गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 के बाद से शासकीय सेवकों के आश्रितों के लिए आय की अधिकतम सीमा में कोई वृद्धि नहीं की गई थी, जबकि राज्य में श्रमिकों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में शासकीय सेवकों के आश्रित परिवारों को पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था। अब आय सीमा बढ़ने से जिन आश्रितों की आय 3,050 रूपये से अधिक थी, वे सभी परिवार पेंशन का लाभ प्राप्त करने के पात्र हो सकेंगे। कोरबा जिले के प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में कल प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में 17 विभिन्न योजनाओं के 85,000 से अधिक श्रमिकों को 46 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। ये राशि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों को जारी की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विभिन्न योजनाओं के तहत 235 करोड़ रुपए की सहायता राशि श्रमिकों को प्रदान की जा चुकी है। श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिकों को DBT के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता राशि भेजी गई है, जिसका सीधा लाभ श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को मिलेगा। श्रम मंत्री ने बताया कि श्रमिकों की समस्या शिकायतों के समाधान और सहायता के लिए श्रमेव जयते पोर्टल शुरू की गई है, जिसमें श्रमिक अपनी समस्याएं बता सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने प्रदेश के स्कूलों में राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण के मद्देनजर स्कूलों की दक्षता बढ़ाने के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि आगामी 4 दिसंबर को केंद्रीय स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों की दक्षता का परीक्षण किया जाएगा, जिसके तहत कक्षा 3, 6 और 9 के विद्यार्थियों की दक्षता का राष्ट्रीय सर्वेक्षण होगा। नौरोजाबाद में तीसरी लाइन जोड़ने के काम की वजह से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 25 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही 2 ट्रेनों की रूट लाइनें बदल दी गई हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए चलने वाली और छत्तीसगढ़ से भी गुजरने वाली लगभग 24 ट्रेनें अभी रद्द रहेंगी। ये सभी ट्रेनें 21 नवम्बर से 2 दिसम्बर तक अलग अलग दिनों में कैंसिल रहेंगी। इनमें 16 एक्सप्रेस और 9 लोकल ट्रेनें शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी निवासी बैडमिंटन खिलाड़ी रितिका ध्रुव से वीडियो कॉल पर बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने रितिका को बैडमिंटन खेल के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। रितिका ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके पिताजी मजदूर हैं और माता आंगनबाड़ी सहायिका हैं। उसे बचपन से ही बैडमिंटन के खेल में रुचि थी। रितिका ने बताया कि उसने बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल गेम्स और हाल ही में ओडिशा में नेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। वह आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना चाहती हैं और ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक कल 18 नवम्बर को चित्रकूट में आयोजित की जाएगी। मोहला मानपुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर मिली है। मौके से पुलिस ने माओवादियों की सामग्री बड़ी मात्रा में बरामद की है। यह मुठभेड़ मदनवाड़ा इलाके के आमाटोला गांव के पास हुई है। कोरबा जिले की प्रभारी सचिव अलरमेल मंगई डी ने कल जिले के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए। रायपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा एनालिटिक्स पर आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ। बेमेतरा में ड्यूटी पर तैनात एसआई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। एसआई जयराम गंगबर बेमेतरा के बीरनपुर सहायता केंद्र में पदस्थ थे। बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल के हॉस्टल में महिला डॉक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह महिला चिकित्सक अंबिकापुर जिले के सुखरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ थी। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में प्रशासन ने अवैध रेत परिवहन करते हुए 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया है और कबीरधाम जिले की चिल्फी पुलिस ने जांच के दौरान संदिग्ध वाहन से 30 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने जमीन खरीदी बिक्री में गाइडलाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर भी रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन दर पर ही लेने का फैसला लिया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा बस्तर जिले के धुड़माराज गांव का चयन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन के लिए किया गया। प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों में अवैध धान की बिक्री रोकने लगाई गई बायोमेट्रिक मशीनें, सीमावर्ती जिलों में एंट्री एग्जिट पॉइंट पर स्थायी और अस्थायी नाके बनाए गए और जगदलपुर में आयोजित अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में आज तमिलनाडु पुलिस ने छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ को हराया। इसके साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।